तफसीर 19वें पारे की पहली आयत है सूरत अल फुरकान की आयत नंबर 21। और यहाँ पे भी जो है वो मुखालिफीन के इतराजात और इनके जवाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके इतराजात जो हैं उनका जवाब दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को सबर और इस्तकामत की तलकीन कर रहे हैं। फ़क़ालल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, ला यरजूना वो उम्मीद नहीं रखते, यरजूना इसका मादा है रूट रा जीम वाओ, इसके मानी है उम्मीद रखना, रिजा, बाज लोग रिजा नाम भी रखते हैं, तो ला यरजूना जो उम्मीद नहीं रखते, लिखा अना हमसे मिलने की, लाम काफिया लाम काफ वो इसका मादा है लिखा का, मुलाकात को कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वो लोग जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जिन्हें हमसे मिलने का यकीन नहीं है, उम्मीद नहीं है, उन लोगों ने कहा लौला उन्जिला अलैना अल मलाइकतु औ नरा रब्बना, कि क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें। तो अब जो है यहाँ पे उनका इतराज जो है वो नकल किया जा रहा है कि अगर वाकई अल्लाह ये चाहता है कि हम तक अपना पैगाम पहुंचाए तो एक नबी को जो है वो भेजने की क्या जरूरत है, हर शख्स के पास एक फरिश्ता आना चाहिए जो उसे ये बताए कि तेरा रब तुझे हदायत देता है, या फिर फरिश्ते जो हैं उनका एक वफद आए मजमाए आम में सबके सामने और वो आकर अल्लाह का पैगाम जो है वो पहुंचाए। लौला उन्जिला अलैना अल मलाइकतु, क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, औ नरा रब्बना, या फिर हम अपने रब को देखें। अब अल्लाह ताला ने उनका जवाब दिया है उनके इस एतराज का, लकद इस्तकबरु फी अनफुसिहिम व अतौ उतुवन कबीरा, लकद अलबत्ता तहकीक इस्तकबरु, इन्होंने किब्र मांगा, इन लोगों ने तकबूर किया, और तकबूर का मतलब क्या होता है कि हक को झूठलाना और अपने आप को बड़ा समझना, बतर अल हक की वगमत उन्नास, के हक को झूठलाना और अपने आप को बड़ा समझना। और ये जो तकबूर है ये क्या है कि हक बात को रद्द करना, लोगों को हकीर जानना, घुमंड का ये आखिरी दर्जा है, आठवां दर्जा किब्र करना। तो उन्होंने जो है वो अपने आप में किब्र किया, बड़ा घुमंड ले बैठे अपने आप में, वा अतौ उतुवन कबीरा ऐन तावो, यही इसका रूट है, इसके मानी है सरकशी करना, ऐसी सरकशी जो तकबूर की बिना पर हो, इंसान अपने आप को बड़ा समझकर अल्लाह के हुक्म से सरकशी करे, तो उसको कहते हैं अतौ। तो फरमाया कि इन्होंने जो है वो सरकशी की, और कैसी, उतुवन कबीरा, बड़ी सरकशी। तो यहाँ पे उनकी जो सरकशी है, उनका जो इनकार है, उसकी शिद्दत जो है उसको जाहिर किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वो लोग जो के प्यारे रसूल की रिसालत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं आए, या फिर हम अपने रब को देख लेते कि हमारा रब हमें खुद कह देता कि ये मेरा रसूल है, इसका कहना मानो, तो असल में ये वो लोग हैं जो कयामत और उसके हिसाब किताब के मुनकिर हैं, ये अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, ये अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि अल्लाह इनसे हम कलाम हो, फरिश्ते इनके पास आकर इनसे खिताब करें। दरअसल ये इंसानियत से दूर निकल गए हैं, क्योंकि अगर ये अल्लाह के फरमा बरदार होते तो ये इस तरह की बातें ना करते। यौमा यरौनल मलाइकाता, जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि इन्होंने फरिश्तों को देखने का मुतालबा किया है कि फरिश्ते इनके पास आए, जिस दिन फरिश्ते इनके पास आएंगे, ये फरिश्तों को देखेंगे, ला बुशरा यौमाइज़िल लिल मुजरिमीना, उस दिन मुजरिमों के लिए वो किसी खुशी का दिन नहीं होगा। ला बुशरा, नहीं खुशखबरी, यौमाइज़िन उस दिन, लिल मुजरिमीना मुजरिमीन के लिए। इसके मानी ये हैं कि फरिश्ते जब किसी के पास आते हैं तो वो कोई खुशखबरी की बात नहीं है। फरिश्ते कब आते हैं? फरिश्ते जो है वो अल्लाह का अजाब लेकर आते हैं, फरिश्ते जो है वो मौत का पैगाम लेकर आते हैं, है ना? तो काफिर फरिश्तों को देखने की आरजू करते हैं, लेकिन मौत के वक्त जब ये फरिश्तों को देखेंगे तो इनके लिए कोई खुशी और मुसर्रत का मौका नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते जो काफिर हैं, जब उनकी रूह निकालते हैं, खबीस रूह को खबीस जिस्म से जब निकालते हैं तो रूह दौड़ती है और भागती है, जिस पर फरिश्ते उसे मारते हैं और कूटते हैं। सूरत अल अनफाल आयत 50, 50, सूरत अल अनाम आयत 93, इसमें आप पढ़ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो मोमिन है, उनकी रूह को जब फरिश्ते निकालते हैं तो बड़े आराम के साथ उन्हें जन्नत और नेमतों की खुशखबरी सुनाते हैं, सूरत हामिम सजदा आयत 30 से 32 तक। और फिर हदीस में भी आता है कि फरिश्ते मोमिन की रूह से कहते हैं, ऐ पाक रूह जो पाक जिस्म में थी, निकल और ऐसी जगह चल जहां अल्लाह की नेमतें हैं और वो रब है जो तुझसे राजी है। वन्नाज़ियाति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता। तो यानी जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे, तो इसके एक मानी है कि मौत के दिन। दूसरे मानी मुफस्सरीन ने ये बयान किए हैं कि वो कयामत का दिन होगा, और कहते हैं दोनों ही मानी सही हैं, क्योंकि ये दोनों मौके ऐसे हैं कि जिस वक्त फरिश्ते जो है वो हाजिर होंगे, लेकिन जो मुजरिम है इनके लिए कोई खुशी का दिन नहीं होगा। वह यकूलूना, और वो कहेंगे, हिजरम महजूरा, और वो चीखेंगे और वो पुकारेंगे हिजरन। हिजरन जो है इसके मानी है कि रोक, महजूरा रकावट। अब आप देखें कि हिजरन और महजूरा इन दोनों का एक ही रूट है। हाजीम रा जो है इसके मानी होते हैं मना करना, रोक देना। अब आप देखें कि अकल को भी हिजर कहा जाता है, क्योंकि अकल इंसानों को ऐसे कामों से रोकती है जो इंसान के लायक नहीं है। तो इसी तरह खाना काबा के उस हिस्से को जो हतीम है उसको हिजर कहा जाता है, जिसे कुरैश मक्का ने खाना काबा में शामिल नहीं किया था, इसलिए तवाफ करने वालों के लिए इसके अंदर से तवाफ करना मना है। तवाफ करते वक्त इसके बैरूनी हिस्से से गुजरना चाहिए, इसलिए उसके वो जो हतीम की जगह है उसके बाहर एक दीवार सी बनाई गई है, तो उसको भी जो है वो हिजर कहते हैं। इसके अलावा यानी फिर हिजर के मानी क्या है? रोक के भी हैं, महफूज जगह के भी हैं, और महजूरा जो है ये उसकी ताकीद के लिए आया है। ये मुहावरा था जो अरब लोग बोलते थे, हिजरम महजूरा। कब बोलते थे? जब कोई मुसीबत सामने होती उससे बचने के लिए वो लोगों से कहते थे पनाह है पनाह, रोक रोक, यानी हमें इस मुसीबत से पनाह दे दो। तो कयामत के दिन भी जब कुफार फरिश्तों को सामने अजाब लाता देखेंगे तो दुनिया की आदत के मुताबिक ये लफ्ज कहेंगे, हिजरम महजूरा, के रोक रकावट, रोक लिए जाओ, रोक लिए जाओ। और एक इसके मानी ये भी बताए जाते हैं कि वह यकूलूना हिजरम महजूरा, के यानी वो तो कहेंगे ना कि हमसे ये दूर रहे, हमसे रोक लिए जाएं, लेकिन फरिश्ते उनके जवाब में कहेंगे कि जन्नत काफिरों पर हराम और ममनू है, यानी आज तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, आज जन्नत जो है तो उसमें तुम नहीं जा सकते। तो बहरहाल इसके मानी यहां पर ये हैं कि आज जन्नत तुम पर हराम है, जन्नत की नेमतें तुम पर हराम है, और आज जो है वो जन्नत और जन्नत की नेमतों की जो खुशखबरी है उससे तुम महरूम किए जा रहे हो, तुम रोके जा रहे हो। और वो भी, वो क्या चाहेंगे कि वो भी फरिश्तों को देखकर जो है वो डरेंगे, और वो चाहेंगे कि ये फरिश्ते जो हैं वो रोक लिए जाएं, कि तुम रोक लिए जाओ। तो वो दुनिया के आदत के मुताबिक कहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकेगा। फकदिमना इलामा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअ मंसूरा। और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। वकदिमना, कदिमना जो है कदम रखना, आगे बढ़ना। वकदिमना, और यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम कदम रखेंगे, मानी क्या है कि हम उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे, और हम मुतवज्जो होंगे इला तरफ मा अमलू, जो अमल उन्होंने किए, यानी हम उन्होंने जो अमाल किए होंगे हम उनके अमाल की तरफ जो है वो मुतवज्जो होंगे। इला मा अमेलू मिन अमलिन, उन्होंने जो कुछ भी अमल किए थे हमने, हम उनकी तरफ मुतवज्जो होंगे, और फिर उनके अमलों को देखकर करेंगे क्या। फजअलनाहु हबा मंसूरा, बस हम बना देंगे उनको हबा अन। हबा अन जो है इसका रूट है हा बा वो, गर्दो गुबार, हर चीज के उड़ते फिरते जर्रात। हबाअन बारीक जर्रों को कहते हैं, जो किसी सुराख से घर के अंदर दाखिल होने वाले सूरज की किरण में महसूस होते हैं। अगर कोई ने हाथ में पकड़ना चाहे तो मुमकिन नहीं है। आप देखें, कभी आप अंदर बैठी हुई हो और दरवाजे में छोटे छोटे अगर सुराख है तो उसमें सूरज की किरणों को आप देखेंगे अंदर दाखिल हो रही हैं, उसमें छोटे छोटे जर्रे आप महसूस करेंगे। वो सूरज की किरणों की वजह से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप हाथ में पकड़ना चाहें तो उनको पकड़ नहीं सकती, मुमकिन नहीं है ना। तो हबान जो है इसके मानी है गर्दोगुबार, हर चीज के उड़ते फिरते जर्रात। तो उस दिन इनके अमल जो हैं वो उड़ते फिरते जर्रात बन जाएंगे, काफरों के अमल कयामत के दिन इन बेहैसियत जर्रों की तरह होंगे। क्यों? उनके अंदर ईमान नहीं था, इखलास नहीं था, ईमान और इखलास से खाली थे, इसलिए जो है वो अल्लाह के नजदीक उनकी कोई कदर व कीमत नहीं होगी। हवा अन, चूरा चूरा को भी कहते हैं, चूरा चूरा गुबार, बारीक जरे, मंसूरा, नून सारा, हर चीज को कहते हैं जो किसी चीज से झड़कर बिखर जाए। नसर जो है ना, बिखरी हुई चीज को कहते हैं। आप देखें कि गैर मंजूम इबारत को नसर कहते हैं। तो मंसूरा उड़ती हुई, बिखरी हुई, बिखरे हुए, गैर मंजूम। मंसूरा यहाँ पे इसम मफूल है। तो इनके अमाल को हम गुबार की तरह, बिखरे हुए गर्दो गुबार की तरह जो है वो उड़ा देंगे। बेहसियत जर्रों की मिसल इनके अमाल होंगे, किनके? कुफार के। ये वही बात है जैसे कुरान में कहीं अल्लाह ताला उसको रमाद राख कहता है, कहीं सराब कहता है, कहीं साफ चिकने पत्थर से जो है वो तशबीह देता है। सूरत अल बकरा आयत 264 में आपने पढ़ा, सूरत इब्राहिम आयत 18 में पढ़ा, और सूरत नूर आयत 29 में। तो आपने इंसान के अमाल की मिसाल जो है वो राख, साफ चिकने पत्थर और सराब की तरह पढ़ी। किस इंसान के अमाल की मिसाल? जिसके अंदर ईमान नहीं था उनके अमाल में, और इखलास नहीं था, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं थे। और अल्लाह के यहाँ किसी अमल के मकबूल होने के लिए जरूरी है कि उसमें ईमान हो, इखलास हो, और शरीयत के मुताबिक हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। तो ये चूंकि कुफार के अमाल हैं, बड़े बड़े अमल हैं, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें हबा मंसूरा बना देंगे। यहां पे जरूरी है कि आप अपना जायजा लें, आप अपना मुहासबा करें कि अब तक की जिंदगी में जो अमल किए हैं वो क्यों किए, नीयत क्या थी, मकसद क्या था, क्या अल्लाह को राजी करने के लिए किए थे। इन्नमल आमालु बिन्नियात। दूसरी बात कि क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक थे, यानी अगर अल्लाह की रजा के लिए थे लेकिन अपनी मर्जी से किए, जो दिल चाहा जैसे चाहा उस तरीके के मुताबिक नहीं किए जो कुरान ने बताया है, जो सुन्नत से पता चलता है, तो फिर उन अमाल का क्या बनेगा ना, कौन से अमाल अल्लाह के यहाँ काम आएंगे जो खालिस अल्लाह के लिए और उसी तरीके से किए जाएं जो कि अल्लाह को पसंद है। यहाँ नियत को फल लगता है पेड़ों से ये कह देना, यहाँ नियत को फल लगता है पेड़ों से ये कह देना, उसे कुछ भी नहीं मिलता जो नियत हार देता है। चमक दरकार है तुझको तो जर्रे की तरह हो जा, चमक दरकार है तुझको तो जर्रे की तरह हो जा, पहाड़ों को हमेशा वो अंधेरे खार देता है। नियत में हो खुलूस तो मंजिल है दो कदम, गालिब हो मसलहत तो हर एक मरहला तवील। अस्हाबुल जन्नती, जन्नत वाले यौमाइज़िन उस दिन खैरुन, जन्नत वाले उस दिन जो है वो बेहतरीन मुस्तकरन ठिकाने में होंगे, खैरुन मुस्तकरन बेहतरीन अच्छी जगह उनको मिलेगी करार के लिए, करन मुस्तकरन काफरारा ठहरने की जगह, व आसनु मकीला और दोपहर गुजारने के लिए उम्दा मकाम। आसनु, आसनु और खैरुन जो है ये दोनों इसम तफसील हैं। खैरुन आपको अफलु के वजन पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन खैर और शर जो है इसके आराब थोड़े मुख्तलिफ होते हैं हर्फ इल्लत की वजह से। यहाँ पे आप देखें खैर जो है, लेकिन ये भी यानी ज्यादा बेहतरीन बेहतर अच्छा, मुस्तकर्रन ठिकाना व आसनु और बहुत खूब बहुत ही उम्दा मकीला, काफ या लाम इसका रूट है, दोपहर को सोना दोपहर के वक्त आराम करना उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम्हें ठहरने के लिए बड़ी ही अच्छी जगह जो है वो दी जाएगी। एक हदीस है में आया है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला निस्फ नहार के वक्त सारी मखलूकात के हिसाब किताब से फारिग हो जाएंगे और दोपहर के सोने के वक्त अहले जन्नत जन्नत में पहुंच जाएंगे और अहले जहन्नुम जहन्नुम में। यौमा तशक्ककुस समाउ, और जिस दिन आसमान जो है फट जाएगा, शीन काफ काफ सख्त चीज का फटना, जैसे शक्कल कमर सूरज चांद जमीन, और इसी तरह यहाँ पे आसमान के फटने का जिक्र है। उस दिन आसमान जो है वो चीरता हुआ आसमान फट जाएगा, बिलगमामी बादलों के साथ, गम से है ना गैन मीमीम, तो आसमान बादलों के साथ फट जाएगा, यानी आसमान को चीरता हुआ एक बादल नमूदार होगा। व नुज़िल अल मलाइकतु तनज़ीला, और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। यानी तुम कहते हो ना कि फरिश्ते क्यों नहीं आते, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब कयामत आएगी तो क्या होगा कि उस दिन जो है वो आसमान फट जाएगा और फरिश्ते जो हैं वो फौज दर फौज उतार दिए जाएंगे। अल मुल्कु यौमाइज़िन हक्कु लिर्रहमान, उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी। सूरत मोमिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वो दिन जबकि सब लोग बेनकाब होंगे, अल्लाह से इनकी कोई चीज छुपी ना होगी, पूछा जाएगा आज बादशाही किसकी है, हर तरफ से जवाब आएगा अकेले अल्लाह की जो सब पर गालिब है। सूरत अल मोमिन आयत नंबर 16। हदीस में इस मजमून को और ज्यादा खोल कर बयान किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक हाथ में आसमानों और दूसरे हाथ में जमीन को लेकर कहेगा, मैं हूं बादशाह, मैं हूं फरमारवा, अब कहाँ है वो जमीन के बादशाह, ऐना मलूकुल अर्द, ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, कहाँ है वो जब्बार, कहाँ है वो मुतकब्बिर लोग। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। यानी आज दुनिया में जो भी बादशाह हैं, जो भी लोग हैं, वो झूठे हैं, यानी वक्ती हैं, नकली हैं, असल बादशाह जो है वो अल्लाह की होगी। और मैदान हशर में फरिश्तों के जलों में जब सारी मखलूक जमा होगी, अल्लाह ताला आएंगे और हिसाब किताब जो है वो शुरू हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا خوفناک دن ایک مومن کے لیے بڑا ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں پھر ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ دنیا کی ساری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ أَسِيرًا، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت وقت ہوگا۔ عین سین را سختی کے لیے آتا ہے، عسرت سختی تنگی، اور قیامت کا دن کفر کرنے والوں کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ وہاں اللہ ہوگا، حساب کتاب کا وقت ہوگا، انسان ہوگا اور اس کے اعمال ہوں گے، کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ چبائے گا۔ عین دواد دواد اس کا روٹ ہے، عین دواد دواد، اور اس کے معنی ہے کسی جاندار کو دانتوں سے کاٹنا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ، اور جس دن ظالم شرک کرنے والا کفر کرنے والا کاٹے گا، عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہاتھ، یعنی اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا۔ یقولو وہ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 27 اور 28 میں جو ہے وہ کافر جو ہیں ان کی حسرت اور پچھتاوے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 27-28 ہے، اس سلسلے میں ایک خاص واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے مشرک سرداروں میں سے تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے حسب عادت شہر کے معززین کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا کھانا اس وقت تک کھا نہیں سکتا جب تک کہ تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا کھا لیا۔ عقبہ کا ایک گہرا دوست تھا عبی بن خلف، یہ کون تھا؟ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا سردار اور مالک بھی تھا، بہت ستاتا تھا حضرت بلال کو اور بہت مارتا بھی تھا رضی اللہ عنہ کو۔ تو عقبہ کا گہرا دوست عبی بن خلف، جب اس کو پتا چلا کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت ناراض ہوا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے ہوئے تھے، اور اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی کی بات تھی، اس لیے میں نے ان کی خاطر یہ کلمہ پڑھ لیا۔ عبی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر تھوک نہ دے۔ یہ کمبخت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کر گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب یہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ندامت اور افسوس سے یہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں گے اور کہیں گے، عقبہ کہے گا، کاش میں نے فلاں عبی بن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ مفسرین کہتے ہیں اگرچہ یہ آیات خاص عقبہ کے واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنا دوست بناتا ہے۔ ان آیات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو دو دوست دنیا میں گناہ پر دوستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گناہوں میں مدد کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اپنی اس گہری دوستی پر یہ روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا किसी गैर मुस्लिम को अपना साथी ना बनाओ और तुम्हारा माल बतौर दोस्ती के सिर्फ मुत्तकी आदमी खाए और गैर मुत्तकी से दोस्ती ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान अपने दोस्त के दीन और तरीके पर चला करता है, इसलिए दोस्त बनाने से पहले खूब गौर कर लिया करो कि किसको दोस्त बना रहे हो। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हमारे मजलिसी दोस्तों में कौन लोग बेहतर हैं। आपने फरमाया, वो शख्स जिसको देखकर खुदा याद आए और जिसकी गुफ्तगू से तुम्हारा इल्म बढ़े और जिसके अमल को देखकर आखिरत की याद ताजा हो जाए। तो यहाँ पर जो है क्या बात बताई जा रही है कि उस दिन जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता, या लैतनी इत्तखज्तु मअर रसूलि सबीला, काश मैंने रसूल की पैरवी इख्तियार की होती। तो इससे जो है ये बात पता चलती है कि हमें भी जो है वो अपना जायजा लेना चाहिए कि क्या मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हूँ, क्या मैं सीरत पर अमल करती हूँ, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आदीस जो है उसके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी जो है वो गुजारती हूँ। और यहाँ पे जो है ये बात बताई जा रही है कि कयामत के दिन जिनकी दोस्ती गुमराही की दोस्ती थी, मुश्रिकाना दोस्ती थी, जिनकी दोस्ती की बुनियाद गुनाह थे, कयामत के दिन वो लोग जो है वो हसरत करेंगे, कयामत के दिन वो लोग पछताएंगे, वो लोग परेशान होंगे, वो अपनी दांतों से अपनी उंगलियों को काटेंगे और कहेंगे, काश कि हमने दुनिया में रसूल की बात मानी होती, उन पर ईमान ले आए होते, काश हमने फलां काफिर शैतान को अपना दोस्त ना बनाया होता। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो वाकयात है ये हमारे सामने अमल का पहला उसूल तो ये रखते हैं कि सोबते सवाले इख्तियार करें, सोबते सवाले नेक लोगों से दोस्ती करें। आपको अपना मुहासबा करना है कि मेरे दोस्त कौन हैं और उनके क्या असरात मुझ पर आते हैं और मेरे क्या असरात उन पर जाते हैं। यानी जो है क्या मेरे दोस्त ऐसे हैं कि उनके नेकी के असरात मुझ पर आए। यानी कैसे आप मुहासबा करेंगी? मसलन आप अपने दोस्तों से मिलती हैं, वीकेंड पर मिलती हैं, छुट्टियों में मिलती हैं, सुबह शाम मिलती हैं, फोन पर बात करती हैं, आप जरूर देखा करें कि उनसे गुफ्तगू करने के बाद मेरे दिल में नमाज कुरान का नेकी का शौक पैदा हुआ है या दुनिया की मोहब्बत बढ़ रही है, या उनसे बातचीत करके मैंने लड़ाई शुरू कर दी, शिकवे शिकायतें करनी शुरू कर दी, मैं दुनिया की दौड़ में आगे बढ़ने लगी या मैं नेकियों में आगे जो है वो बढ़ने लगी। तो असल बात क्या है कि हमें जो है वो सोहबते सवाले इख्तियार करनी है, नेकियों में आगे बढ़ना है और जरूर ये सोचना है कि मेरे जो दोस्त हैं वो कौन हैं। या वही लता एकाश मुझको, हाय बर्बादी मेरी, लैतनी, काश के मैंने, लम अत्तखिज ना बनाया होता, फुलानन खलीला, फलां को दोस्त, खलील जो है वो जिगरी और गहरे दोस्त को कहते हैं, काश मैंने फलां को अपना दोस्त, जिगरी दोस्त ना बनाया होता, लकद अदल्लनी अन जिक्री बादा इज जानी वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, उस दोस्त के बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी, लकद अदल्लानी तहकीक मुझे गुमराह कर दिया, अन जिक्री इस नसीहत से, इस कुरान से, इस पैगाम से मेरे उस दोस्त ने मुझे गुमराह कर दिया, बादा इस जानी जबकि ये मेरे पास आ गया था, वकान शैतानु और था शैतान, लिल इंसानी खजूला इंसान के हक में शैतान बड़ा ही जो है वो बेवफा निकला। अब आप देखें कि खजूल जो है खा जाल लाम ये ऐसे दोस्त को कहते हैं जो बेवफा हो और एन जब वक्त हो ना वफा करने का और एन उस वक्त वो दगा दे जाए, एन उस वक्त वो धोखा दे जाए तो उसको जो है वो खजूला कहा जाता है। और वैसे दोस्त कौन होता है? जो मुश्किल में काम आए, जो मुसीबत में काम आए। लेकिन शैतान कैसा दोस्त है? जो वक्त पर जो है वो धोखा देने वाला है। किसी की मदद ना करना, मदद के वक्त साथ छोड़ देना, जबानी तो दोस्ती के बहुत दावे करना, दम भरना, लेकिन मुसीबत के वक्त जो है वो साथ छोड़ देना। और जो दोस्त सबज बाग दिखाते हैं, खुशनुमा वादे करते हैं, लेकिन मुश्किल पड़ने पर दुनिया ही में साथ छोड़ देते हैं, तो फिर आखिरत में क्या काम आएंगे? तो ये है जिस पर गौर करना है और जिस पर जो है वो सोचना है। वकान शैतानु लिल इंसानी खजूला, वकाल रसूलु, और रसूल कहेगा या रब्बे इन कौमी तखजू हाजल कुरान महजूरा, कह मेरे रब मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को महजूरा कर लिया था। महजूरा के दो मानी हैं, हा जीम रा हिजर, हिजर का मतलब है कि जुदाई, अलैदगी, के ए मेरे रब मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। वैसे तो काफिर है ना जो कुरान को छोड़ते हैं, लेकिन वो मुसलमान जो कुरान पर ईमान तो रखते हैं लेकिन ना उसकी तिलावत करते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, ना कुरान के अहकाम जो हैं उस पर चलते हैं, तो वो भी इसमें आते हैं कि उन्होंने कुरान को छोड़ दिया है। इससे अलैदगी, हिजर, दूरी इख्तियार कर ली है। और अगर हा के ऊपर पेश पड़ी जाए हुजर, तो फिर इसके मानी होते हैं कि जैसे फजूल, बकवास के मानी में, जैसे हुजर जो है उसके मानी है कि उसका मजाक उड़ाना। तो उन्होंने क्या किया कि कुरान जो है उसका मजाक उड़ाया, कि मेरी कौम ने कुरान जो है इसका मजाक उड़ाया, यानी इसको बकवास समझा और तरह तरह की बातें इस पर छांटते रहे। ये दोनों माने में इस्तेमाल होता है, या तो हिजर या हजर, और या फिर हुजर। हिजर होगा तो जैसे कबूल ही नहीं किया, उसके पास ही नहीं गए, दूर ही रहे, और अगर हुजर होगा तो इसको फजूल समझा, बकवास समझा और तरह तरह की बातें छांटी, और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तजहीक बना लिया था। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि जो मुजरिम लोग हैं हर नबी के हमने दुश्मन बनाए हैं। वो क्या करते हैं? मुझे वो किताब का इनकार करते हैं और नबी की मुखालफत करते हैं। तो लोग भी, अहले मक्का भी क्या कर रहे हैं? कुरान का इनकार करके आपकी मुखालफत कर रहे हैं। तो अगर आपकी मुखालफत कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं है कि जिसका आप गम करें। आपको सब्र करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये तरीका रहा है कि हमने इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। वह कफा बे रबी का हादिया व नसीरा, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब भी रहनुमाई और मदद को काफी है। तो ये जो तंग कर रहे हैं तो इसमें आप सब्र से मदद लीजिए, मजबूत अज्म के साथ जो है वो दावा करते जाइए। और बाकी ये कि आपका रब भी आपकी रहनुमाई और मदद के लिए काफी है। अब देखिए आयत नंबर 32 है, इसमें उनका एक एतराज है और अल्लाह ताला ने तीन बातें जवाब में कही हैं। फकाल अल्लज़ीना कफरू, और कुफर करने वालों ने कहा लौला नुज़िला अलैहिल कुरानु जुमलतन वाहिदा, कि इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया। और वो क्या इतराज करते थे कि कुरान मजीद जो है वो इकट्ठा जो है वो एक ही दफा क्यों नहीं उतारा गया। यानी अगर अल्लाह का ये कलाम था तो इसको थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करने की क्या जरूरत थी। तो تو یہ تھوڑا تھوڑا ہو کے چونکہ نازل ہوتا تھا تو اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ خود ہی سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا اس کو بناتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ جواب دیا ہے. کذالک, اسی لیے ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی ہے. کیوں؟ نمبر ایک, لنثبت بہ فؤادک, لنثبت تاکہ ہم جو ہیں تاکہ ہم قائم رکھیں, تاکہ ہم جو ہے وہ قوی رکھیں, ثابت رکھیں, بہی آپ کو, فؤادک لنثبت تاکہ ہم آپ کو قائم رکھیں, بہی اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ساتھ آپ کو ثابت رکھیں, قائم رکھیں, فؤادک آپ کا دے, یعنی قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے آپ کے دل کو قائم رکھیں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, نمبر دو, وَرَتَّلْنَاهُ اور ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں اس کو, ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, آہستہ آہستہ پڑھنا, اور اسی غرض کے لیے ہم اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. را تا لام جو ہے کسی چیز کی خوبی, آرائش اور بھلائی کو کہتے ہیں. ویسے دیکھیں پڑھنے کے لیے ایک تو قرا آتا ہے, دوسرا تلا یتلو تلون یا تلا یتلو تلاوتن, تیسرا رتل ہے, کسی چیز کی خوبی اور بھلائی, سہولت اور حسن تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا. فَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے کیا کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو پہلی بات کیا کہی کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس طرح آپ کا دل جو ہے مضبوط کریں. فؤادک, فا حمزہ دال جو ہے گوشت کو آگ میں بھوننے کو بھی کہتے ہیں, گرمی حرارت, جذبات کی گرمی جو دل میں ہوتی ہے. فؤاد یہ معدے کے منہ پر جو دل کا حصہ ہے, جو جذبات کی گرمی کا مرکز ہے, اس کو فؤاد کہا جاتا ہے, تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی کریں, مضبوط کریں, ذہن نشین کریں, اور ہم اس کو جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اب تیسری اس کی وجہ بتائی ہے کہ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا, کہ وَلَا يَأْتُونَكَ اور نہیں لاتے تیرے پاس, بِمَثَلٍ کوئی بات, یعنی اہل مکہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال یا اعتراض لے کر آتے ہیں, إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ مگر ہم بھیج دیتے ہیں تیرے پاس حق کے ساتھ. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بہت اچھا کھول کر, یعنی جب بھی اہل مکہ آپ کے پاس کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے, اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ تو ہم نے اس کا برحق ٹھیک جواب تمہیں دیا, وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بہترین طریقے سے بات کو جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیا, بالکل اس کو جو ہے وہ کھول کر بیان کیا تفسیر کے ساتھ, اور آسن اچھی اچھی تفسیر. اور یہاں پہ اس طرح قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کرنے کے جو ہے وہ تین مقاصد جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے پہلا کیا ہے, تاکہ تھوڑا تھوڑا, جیسے مکہ کے دور میں مشکلات تھیں, پریشانیاں تھیں, عجیب عجیب حالات ہوتے تھے اور وہ ستاتے تھے اہل مکہ, تنگ کرتے تھے, تو موقع کی مناسبت سے تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوتی تاکہ ان کے دل کو تسلی دی جائے, انہیں ذہن نشین ہو سکے. دوسری بات کیا تھی, ٹھہر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ ان کو آیات کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجتے تھے تاکہ جو ہے وہ یاد کر سکے, ان کو سمجھ سکے. اور تیسری کہ جب وہ کوئی اعتراض کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب نازل کر دیتے, فوراً اس کی وضاحت کر دیتے. تو یہ تھی وجوہات. پھر آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا وادل سبیلا. الذین وہ لوگ یحشرون جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل الی جہنم جہنم کی طرف اولئک شر مکانا وادل سبیلا یہی لوگ ہیں برا ٹھکانہ رکھنے والے وادل سبیلا اور بہکے ہوئے راستے سے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ الٹی باتیں کرتے ہیں, یہ اعتراض کرتے ہیں, تو قیامت کے دن ان کے ان اعتراضات کی وجہ سے ان کی یہ جو عقلیں اوندھی ہو گئی ہیں, یہ جو الٹی باتیں کرتے ہیں, تو قیامت کے دن ان کو اوندھے منہ جہنم کی طرف چلا کر لے جایا جائے گا. بخاری کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پروردگار نے انسان کو دو پاؤں پر چلایا ہے کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن انہیں منہ کے بل چلانا جو ہے وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ جو چاہے اور جیسے چاہے کرے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے ان کا انجام بتانے کے بعد آیت نمبر 35 سے جو ہے وہ اب یہاں سے پیغمبروں کے واقعات جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں, 35 سے لے کر 44 تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو صبر اور استقامت کی تلقین کرنے کے لیے پچھلی تاریخ سے جو ہے وہ واقعات سنائے گئے مختصراً. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا مَعَهُ اس کے ساتھ اخاہ اس کے بھائی کو ہارونہ ہارون ہارانون اس کا روٹ ہے وزیرہ مددگار وَزَارَا اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا وزر بوجھ کو کہتے ہیں اور وزیر جو بوجھ کو اٹھائے مددگار اور ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیجئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا. فقلنا پس ہم نے ان سے کہا اذهبا تم دونوں جاؤ, جیسے اذهبان تھا نون گر چکا ہے, تم دونوں جاؤ الى القوم ایک ایسی قوم کے پاس الذین کذبوا بآیاتنا اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ فرعون نے جو ہے وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. کون سی آیات؟ جو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ذریعے ان کو پہنچی تھی اور جن کی تبلیغ بعد میں ایک مدت تک بنی اسرائیل کے صلحہ کرتے رہے. الذین کذبوا بآیاتنا جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے, ایک ایسی قوم کے پاس جاؤ. فدمرناہم تدمیرا آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. دال میم را اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر ہلاکت ڈالنا, کسی کو پامال کر دینا, کسی کو نیست و نابود کر دینا, اکھیڑ دینا, ہلاک کر دینا, جیسے کسی کو جو ہے وہ بالکل ہی اکھیڑ کر رکھ دیا جائے, اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا. جیسے درخت ہے تو اس کو اگر جڑوں کو اکھیڑ دیا جائے تو جڑ تو سوکھ درخت تو سوکھ جائے گا نا. تو آخر کار ان لوگوں کو بھی ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. کیوں؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. قوم نوح اور یہی حال قوم نوح کا ہوا لما کذب الرسولا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اغرقناہم تو ہم نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا. وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ تو ایک طرف قوم فرعون کا ذکر ہے اور دوسری طرف جو ہے یہ قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ قوم فرعون ہو یا قوم عاد، یعنی قوم فرعون ہو یا قوم نوح، اور جب اس نے رسولوں کا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں بھی ان کو سزا دی۔ انہیں کیا ملی تھی؟ فدمرناہم تدمیرا، اور ان کو کیا کیا؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، عبرت۔ وآتدنا للظالمین عذابا علیما، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے، اور اس سے مراد ہے قیامت کا عذاب، یعنی آخرت میں جو انہیں دردناک سزا ملے گی اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں۔ اور آتدنا اس کے معنی ہے کہ اہتمام سے تیار کر رکھا ہے۔ وآدا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا، پھر اس کے بعد وآدن اور آد کو، وثمودا اور ثمود کو، تو قوم عاد کی طرف جو تھے ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ اصحاب الرسی اور کنویں والے، اور اصحاب الرس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے، اور لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مارا تھا۔ رس عربی زبان میں پرانے کنویں یا اندھے کنویں کو کہا جاتا ہے۔ وَقُرُونًا، اور قومیں، قرن واحد ہے، قرون جمع، اور قومیں، بینا درمیان اس کے، ذالکا کثیرا، بہت سی، سب کے لیے، یعنی اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ، یعنی صرف یہی قومیں نہیں، قوم فرعون اور قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود، صرف یہی نہیں، وَاصحاب الرسی وَقُرُونًا بینا ذالکا کثیرا، اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ وَكُلًّا دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ وَكُلًّا، اور سب کو، تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، آخر کار غارت کر دیا، تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اس کا روٹ ہے آپ دیکھیں کہ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ تباہ کر دینا، تہس نہس کر دینا۔ تا با را اس کا روٹ ہے، اور اس کے معنی ہے توڑ دینا، ہلاک کر دینا، بالکل ہی تباہ و برباد کر دینا، نشان تک مٹا دینا، تہس نہس کر دینا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ یہ آیت نمبر جو 40 ہے، اس میں قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، اور بے شک وہ گزر چکے ہیں، عَلَى الْقَرْيَةِ، ایک ایسی بستی پر، الَّتِي، وہ بستی جو، اُمْطِرَتْ، برسائے گئے، برسایا گیا، مطر، بارش، السو، بری، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، اور یہ تھی لوط علیہ السلام کی بستی، ان کی قوم۔ وہ بدترین بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے، اور اہل حجاز کے قافلے فلسطین اور شام جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے، اور وہ تباہی کے آثار دیکھتے تھے، بلکہ آس پاس کے باشندوں سے قوم لوط کی عبرتناک داستانیں بھی وہ سنتے رہتے تھے۔ اولم یکونو یرونہا، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ بلکہ انولا یرجون نشورا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کے قائل ہی نہیں کہ آخرت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا, اس لیے یہ ان سارے واقعات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اَحَاذَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, کہتے ہیں کیا یہ ہے یہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے دوبارہ پچھلی قوموں کا ذکر کر کے کہ کیسے انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا, تو اب دوبارہ جو ہے اہل مکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اہل مکہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. ان قادہ کاف و دال اس کا روٹ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہونا, قریب ہونا. ان قادہ بے شک قریب تھا, لیدلنا کہ گمراہ کر دیتا ہم کو, ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے, یعنی یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا, لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے. لولا ان صبرنا علیہا کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے تو یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتے. وسوف یعلمون حین یرون العذاب من ادل سبیلا, اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اچھا جلدی ان کو پتا چل جائے گا. اب دیکھیں سوفا اور سا یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, دونوں کا ترجمہ انقریب ہوتا ہے, مستقبل میں انقریب, لیکن یہ جو سا ہے یہ مستقبل قریب کے لیے جلدی کے لیے آتا ہے, اور سوفا جو ہے آتا یہ بھی جلدی کے لیے ہے لیکن مستقل مستقبل بعید میں. جیسے مثلا آپ یہ کہتی ہیں کہ کلاس کے بعد ابھی میں سو جاؤں گی, تو آپ سا کا لفظ بولیں گی, اور پھر کل میں یہ کام کروں گی, تو کل کے لیے آپ سوفا کہیں گی اور ابھی کے لیے آپ جو ہے وہ سا کا لفظ بولیں گی. تو ہے دونوں کے معنی ان قریب, یعنی جلدی ہی, کچھ ابھی کر لیں گی کچھ آپ کل کریں گی, یعنی کچھ ابھی تھوڑی دیر میں اور کچھ پھر دیر بعد, یا جیسے کچھ 10 دن کے بعد کچھ 1 مہینے کے بعد. تو جو مستقل میں جلدی کرنا ہے تو سا, اور جو ذرا دیر سے کرنا ہے تو اس کے لیے سوفا لفظ آتا ہے. وسوفا ان قریب, یا لمونا وہ جانیں گے, حینا جس وقت, یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب کو, من ادل سبیلا کہ کون بھٹکا ہوا تھا, کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. ارئیتا من اتخذ الہہ ہوا, کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. من جس نے اتخذ بنا لیا الہہ اپنا معبود, ہواہ اپنی خواہش کو. افا انت تکون علیہ وکیلا, کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو. اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اللہ تعالی کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. تو اب یہاں پر جو ہے دعوت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو خدا کا مقام دے دیتے ہیں, تو یہ کیا ہے, کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو. افا انت تکون علیہ وکیلا, ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں, انہم الا کالانعام بل ہم ادل سبیلا, बल्कि ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत समझा रहे हैं कि ये बाप दादा की तकलीद करते हैं, ये अपने ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी करते हैं, और जो है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात नहीं करते। और अरईता मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा, तो बदतरीन माबूद जो पूजा जाता है वो क्या कौन है? इंसान की अपनी ख्वाहिशाते नफ्स, कि जो चीज अच्छी लगी बस वो करना शुरू कर दिया, यानी जो चीज नफ्स को अच्छी लगी उसको अपना दीन और मजहब बना लिया। तो ऐसे शख्स को कौन हदायत पर ला सकता है? कौन इसे ऐसे शख्स को अल्लाह के अजाब से छुड़ाएगा? तो ये तो वो शख्स है कि उसके लिए उसके बुरे अमाल खुशनुमा बना दिए गए। अब इस पर क्या अफसोस करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो इसकी तफसीर बयान करते हैं कि जमाना जाहिलियत में आदमी एक अरसे तक सफेद पत्थर की इबादत करता रहता, जब उसे इससे अच्छा पत्थर नजर आ जाता तो पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की पूजा शुरू कर देता। ये कौन लोग हैं? जो अकल और फहम से आरी हैं और जो है वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कह रहे हैं कि ए मोहम्मद, ऐसे लोगों को आप हदायत के रास्ते पर नहीं लगा सकते, आप उन्हें हदायत की तरफ रहनुमाई जो है वो नहीं दे सकते। अब आप भी गौर कीजिए कि आप किसकी जो किसका कहना मानती हैं। सौ खुदावंद मिले एक से एक सजदा तलब, इंसान सख्त मराहिल से खुदा तक पहुंचा। तो मुहासबा करना है, जायजा लेना है कि आप क्या करती हैं। आप देखें कि सूरत फातिहा से लेकर अन्नास तक अल्लाह ताला ने कितने अहकामात दिए हैं। मिसाल के तौर पे आप समझें कि 100 है, तो उन 100 में से कितनों पे आप अमल करती हैं, और कितने ऐसे हैं कि जिंदगी के फैसले आप अपनी मर्जी से करती हैं, मैं अपनी मर्जी से करती हूं। तो ये है कि जिसका जायजा लेना है। जब हश्र में पूछा जाएगा था पास खजाना कुव्वत का, वो किस मकसद पे सरफ किया, उस वक्त कहोगी क्या बोलो, हर उजर को कांटे पर तोलो। तो क्या करना है? जायजा लेना है, अपना मुहासबा करना है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 45 से लेकर 60 तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो तौहीद और आखिरत के लिए दलाइल दिए हैं। आम दलाइल हैं, कायनात से दलाइल दिए हैं। फलम तरा इला रब्बिका कैफ मद्दज़्ज़िल, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है। मद्दा या मुद्दू का मतलब होता है उसको लंबा करना, उसको फैला देना, कि वो साये को किस तरह दराज करके फैला देता है। वलौ शा अलजअलहु साकिना, अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता, अगर वो चाहता तो बनाता इसको बेहरकत। सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, फिर बनाया हमने सूरज को इस पर रहनुमा। अब यहां पर अल्लाह ताला ने जो तौहीद के दलाइल दिए हैं, कहा कि देखो अल्लाह ताला ने कायनात में साया किस तरह फैलाया। सुबह सादिक के बाद से सूरज के तुलू होने तक जो है जो साया होता है, क्या होता है? उस वक्त धूप नहीं होती है ना, धूप के साथ साया सिमटना और सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो कहा कि सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला, यानी हमेशा साया ही रहता, सूरज की धूप साये को खत्म ही ना करती, क्योंकि तो धूप से साये का पता चलता है ना, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। अगर सूरज ना होता तो लोग साये से भी मुतारिफ ना होते। आप जरूर इसका जायजा लीजिएगा कि जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त हर चीज का साया लंबा होता है, और जूं जूं सूरज जो है वो उरूज की तरफ आता है, बुलंद होता जाता है, तो साया घटना शुरू हो जाता है। यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि ये सब कुछ यानी साये को लंबा करना और फिर साये को छोटा करना, ये कौन करता है? यानी बढ़ाता भी है और घटाता भी है। तो ये घटाना और बढ़ाना जो है ये अल्लाह के हाथ में है, ये अल्लाह करता है। तो क्या तुम इस पे गौर नहीं करते? सुम्मा कबद ना हो, फिर हमने समेट लिया इसको, इलेना अपनी तरफ, कबदई यसीरा, समेट कर आहिस्ता आहिस्ता आसानी से। और फिर अल्लाह ताला साए को आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसकी जगह रात का गंभीर अंधेरा जो है वो छा जाता है। तो हम इस साए को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं, क्या होता है, गायब कर देते हैं, फना हो जाता है, रात हो जाती है। तो इसी तरह ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर इंसान जो है वो अल्लाह की तरफ जो है वो लौटेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को अल्लाह अपनी तरफ समेटता चला जाता है। ये थी आयत नंबर 43 में पहली दलील, और उसके साथ ही आयत नंबर 46 में भी उसी की वजाहत थी, और आयत नंबर 47 में आप देखें तो ये दूसरी दलील है, वहुवल्लज़ी जअला लकुमुल लैला लिबासा वन्नौमा सुबातन वजअलन्नहारा नुशूरा, और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया और नींद को सुबाता सुकूने मौत, वजअलन्नहारा नुशूरा और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। अब आप देखें कि जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया, इसके क्या मानी है? लिबास होता है जो किसी को ढांप देता है, छुपा देता है। लिबास इंसानी ढांचे को छुपाता है, इसी तरह रात तुम्हें अपनी तारीकी में छुपा लेती है। तो जब रात होती है, रात की स्याह चादर हर तरफ जब फैल जाती है, तो जैसे ऐसे जैसे कि पर्दा हो गया ना, तो रात को पर्दे की चीज बनाया, लिबास बना दिया। वह नौमा सुबाता, नौम नींद को कहते हैं और सुबात सीन बाता, इसके मानी होते हैं काटने के। नींद इंसान के जिस्म को अमल से काट देती है, उसको राहत देती है, क्योंकि जब नींद आती है तो दिन भर का जो थका हुआ इंसान है वो क्या करता है कि नींद जो है उसकी दिन भर की थकन को काट देती है, खत्म कर देती है। इंसान जैसे दिन में सोचता है, उसको फिक्रें होती हैं, लेकिन रात के वक्त नींद में दिमाग को आराम मिलता है। तो इस तरह सुबात को जैसे काम को काटती है नींद और दिमाग को जो आराम देती है, तो इस तरह इसका तर्जुमा जो है वो सुकून का भी किया जाता है, वह नौमा सुबह का, और नींद को वैसे सुकून बनाया। और तीसरी चीज क्या है, वजअलना नहारा नुशूरा, और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। इसके माने क्या है कि हर रात के बाद एक सुबह होती है। तो ये जो दलील है ये तौहीद पर भी दलालत है, इसके साथ जिंदगी बाद मौत पर भी। और आप देखें कि नींद जो है वो अंधेरे में नींद अच्छी आती है। और दूसरा क्या है कि दुनिया में जितने लोग हैं सबको एक ही वक्त में अल्लाह ताला उन पर नींद नाजिल कर देते हैं, और अगर लोगों के नींद के औकात मुख्तलिफ होते तो सोना कितना मुश्किल हो जाता। यहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरह मैं रात के वक्त लोगों को सुला देता हूँ और जब चाहता हूं तो जगा देता हूँ, वजअलना नहारा नुशूरा, और दिन को जी उठने का वक्त बनाया, बिल्कुल इसी तरह से जब मैं चाहूंगा तो लोगों को मौत की नींद सुलाऊंगा और जब चाहूंगा तो इनको जो है वो खड़ा करूंगा, इन्हें उठाऊंगा और फिर इनसे जो है वो हिसाब किताब लूंगा। तो ये नींद का जो वक्त है अल्लाह ने मुकर्रर किया है ना, जैसे अगर आप में से कोई चाहे कि दिन इतने घंटे का हो जाए, मेरे अभी इतने काम रहते हैं, तो दिन तो नहीं बड़ा होता, रात हो जाती है ना। तो ये दिन और रात जो है ये क्या है कि इसका एक वक्त मुकर्रर है, और जो ही शाम के अंधेरे फैलते हैं, कारखाने दुकानें बंद होती हैं और लोग अपने घरों को लौटना शुरू हो जाते हैं, और जो ही रात खत्म होती है दिन चढ़ता है और फिर लोग जागते हैं, वजन नशूरा। तो ये जो है इसमें इशारा किया गया है कि इसी तरह जिंदगी के बाद फिर मौत होगी, और मौत के बाद फिर अल्लाह ताला लोगों को जो है वो जगाएगा, खड़ा करेगा और फिर हिसाब किताब होगा। फिर आयत नंबर 48 है, इसमें जो है वो मजीद दो निशानियों का और दलाइल का जिक्र है। वाहु अल्लाजी अरसल रियाहा बुशरम बैना यदई रहमते, और वही तो है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है। और दलील नंबर 4, व अनजलना मिनस समाई मा अंतहूरा मा अंतहूरा, फिर आसमान से जो है वो पाक पानी नाजिल करता है। क्यों? नंबर 5, आयत नंबर 49 में, लिनुहया बिही बल्दतम मैततन, बल्दतम मैतन, ताकि वो उसके जरिए से जिंदगी बख्शे एक मुर्दा इलाके को। बल्दतन इलाका, शहर बस्ती, मैतन मुर्दा, वनुस्तियाहू, और ताकि हम पिलाएं, वनुस्तियाहू और हम पिलाएं इसको, मिम्मा जो कुछ, खलकना पैदा किया हमने, अनआमन चौपाए, व अनासिया और इंसान, कसीरा बहुत से, और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को हम सैराब कर दें। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी दो तीन नेमतों का खास तौर पे जिक्र किया है, और इसमें से एक तो है हवाएं, और बारिश होने से पहले जो है वो हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जो इस बात का जो है वो पैगाम लेकर आती हैं कि बारिश जो है वो आने वाली है। यानी हवाएं अल्लाह भेजता है बारिश की उम्मीद दिलाकर, और जब हवाएं चलती हैं तो बुशरम खुशखबरी होती है, दिल खुश होते हैं। किस चीज के लिए? कि बेना यदे रहमती, अपनी रहमत के आगे आगे, यानी बारिश होने वाली है। तो हवाएं जो हैं ये क्या हैं? ये बादे नसीम, ये ठंडी हवाएं, ये बाराने रहमत है, ये बारिश की उम्मीद दिलाती हैं। नंबर 2, वानजलना मिनस समाई मा अंतहूरा, फिर अल्लाह ताला जो है वो आसमान से पानी बरसाते हैं, और पानी भी कैसा? तहूरा, तहूरा इसकी सिफत है, यानी पाक साफ पानी अल्लाह ताला आसमान से नाजिल करते हैं। तहूरा जो है ये फऊल के वजन पर आले के मानी में है, यानी ऐसी चीज जिससे पाकिजगी हासिल की जाती है। जैसे वुजू के पानी को वुजू कहते हैं ना, क्योंकि पानी जो है वो पाक होता है, और दूसरों को जो उनको इस्तेमाल करते हैं उसको भी वो पाक कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक है, उसे कोई चीज नापाक नहीं करती, हाँ अगर इसका रंग या बू या जायका बदल जाए तो ऐसा पानी नापाक है। तो पानी अल्लाह ताला पाक नाजिल करते हैं आसमान से, जो बारिश होती है। आयत नंबर 49 में फिर क्या है कि वो जो पानी है उससे एक मुर्दा इलाके को जिंदगी मिलती है, कि बारिश होने से मुर्दा जमीन में जान आ जाती है, उसमें फल फूल पौधे जो है वो उगते हैं। और क्या होता है? वनुस्कियाहु मिम्मा खलकना अनआमा व अनासिया कसीरा, और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवरों और इंसानों को सैराब करे। फिर अल्लाह ताला चार पाए हैं, चौपाए हैं, इंसान हैं, उनमें पानी तकसीम करते हैं, वो अपनी प्यास बुझाते हैं, अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये सब करने वाला अल्लाह है। वलकद सर्रफनाहू बैनहुम लियज़्ज़करू, फरमाया इस करश्मे को हम बार बार इनके सामने लाते हैं, सर्रफ ना हो। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके जो हैं वो तीन मानी हैं। एक ये कि ये जो बारिश का जिक्र है कुरान में बार बार अल्लाह ताला ने बयान किया है। नंबर दो, बार बार गर्मी, खुश्की, मौसमी हवाएं, घटाएं, बरसात और उससे पैदा होने वाली जो रौनक है उसके करिश्मे अल्लाह ताला दिखाते हैं। अल्लाह ताला जब बारिश करते हैं तो एक तरह की बारिश नहीं होती, कहीं कम कहीं ज्यादा, और उसके मुख्तलिफ नताएज जो है निकलते हैं। वलकद सर्रफ ना हो, और हमने ये जो बारिशें हैं इनको जो है वो तरह तरह से जो है वो फेर फेर कर बरसाया, कभी एक इलाके में कभी दूसरे इलाके में, कभी शहर के एक हिस्से में बारिश और दूसरे में नहीं होती, कभी एक में थोड़ी होती है दूसरे में ज्यादा होती है। तो ये क्या है, ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह की मशीयत है, जिस तरह चाहता है कहीं बारिश करता है और कहीं नहीं करता। तो एक तो इसके ये माने भी हैं, और दूसरे इसको ये भी कहा जाता है कि कुरान को अल्लाह ताला ने बार बार जो है फेर फेर कर बयान किया है। इसमें यानी तरह तरह से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मजामीन बयान किए हैं, ये जक्करू ताकि लोग इससे जिक्र करें, जिक्र हासिल करें, नसीहत हासिल करें। फअबा अक्सरुन नासी इल्ला कुफूरा, मगर अक्सर लोग कुफर और नशुकरी के सिवा कोई दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। पहले अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल दिए और बताया कि मैंने बार बार ये समझाया है ताकि लोग शुक्रगुजार बने। अब एंड पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अफसोस, फअबा अक्सरुन नासी इल्ला कुफूरा, मगर अक्सर लोग कुफर और नशुकरी के सिवा कोई दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। इससे क्या बात पता चलती है कि लोग जो हैं वो शुक्रगुजार नहीं बनते। तो आइए यहाँ पे अमल का ये उसूल लें कि मुझे अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है। अब आप देखें कि इस सबक में आपने जो है वो साए के बारे में, धूप के बारे में, नींद के बारे में, रात और दिन के बारे में आपने पढ़ा, साथ ही हवाएं हैं, बारिश है, पाक पानी है, तो ये सब अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो क्या करना चाहिए, जब पानी पीते हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें, जब दिन भर थकने के बाद जो है वो थकावट से चूर हो जाते हैं और रात को लंबी और ठंडी और मीठी नींद जो है वो लेते हैं और थकावट दूर होती है, जहन तरोताजा होता है, तो ये नींद भी अल्लाह की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। साइंसदान कहते हैं कि उस वक्त इंसान जो है उसके हवास मदब हो जाते हैं और उस वक्त इंसान उसके सूंघने की हिस कमजोर हो जाती है। तो ये क्या है, ये अल्लाह की नेमत की निशानी है। तो क्या करना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। और फिर जब सोए तो बेइस्मी का अल्लाहुमा अमूतु व आहिया, अल्लाहुमा बेइस्मी का अमूतु व आहिया, और जब उठे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। और आप देखें कि ये जो पानी है तो हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं जैसे फिल्टर करना, पानी को निथारना, तो आजकल ये जो हम स्वीट वाटर खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि पानी जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर पानी जो है वो ठीक नहीं है या बदबू वाला है या जरासीम वाला है तो आप देखेंगे कितनी बीमारियां होती हैं। और देखें बाज इलाकों में स्वीट वाटर होता ही नहीं और बाज इलाकों में उनके पास पानी नहीं होता, और पानी है तो गंदा है, खराब है। तो जरूर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है और अल्लाह तू मुझे अपनी शुक्रगुजार जो है वो बंदी बना। तो ये सारी नेमतों का जिक्र जो है ये किस लिए है, ताकि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। और ये सारी नेमतें देने वाला कौन है, अल्लाह है ना। देखिए जिन लोगों को नींद नहीं आती, तो जरा वो देखेंगे गोली खाते हैं और कितनी गोलियां खाते हैं नींद के लिए ना, और बाज़ औकात पूरी रात जो है वो अपने सर को तकिए से पटक पटक कर बिस्तर पर जो है वो गुजार देते हैं और नींद नहीं आती। जैसे आज भी एक औरत कह रही थी कि मुझे जो है वो रात को नींद नहीं आ रही थी। तो ये सब कुछ जो है ये क्या है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं और इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर बेहतरीन शुक्र क्या है कि अल्लाह के अताअत गुजार बंदे बने, अल्लाह के मुती बंदे बन जाए। वलौ शिना लबअसना फी कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा, अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक नजीर उठा खड़ा करते। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारी कुदरत से ये चीज बाहर नहीं थी, अगर हम चाहते तो जगह जगह नबी पैदा कर देते। फी कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा, हर बस्ती में एक डराने वाला, हर बस्ती में शहर में एक नबी भेज देते। लेकिन हमने क्या किया, दुनिया भर के लिए एक नबी को भेजा। कौन? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबीयीन। जैसे पूरी दुनिया के लिए एक सूरज काफी है, इसी तरह एक अकेला आफताबे हदायत ही सब दुनिया वालों के लिए काफी है। फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की बात हरगिज ना मानो और इस कुरान को लेकर इनके साथ जिहादे कबीर करो। इसके क्या मानी है कि काफिरों की बात ना मानो, हरगिज ना मानो और इस कुरान को लेकर इन काफिरों के साथ जिहादे कबीर करो। मुफस्सरीन कहते हैं कि इसके मानी ये हैं कि आप जो हैं यानी तबलीग के काम को रोक ना दें इस बात से कि काफिर खुश हो जाएंगे, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने दावा करना है, तबलीग करनी है और जिहाद करना है। वजाहिदहुम बिही, जिहाद किसके साथ करना है? बिही इस कुरान को लेकर, जिहादन कबीरा जिहादे कबीर, इसके मानी है यानी कुरान के जरिए से बड़ा जिहाद करना। जैसे कुरान के अहकाम की तबलीग की जाए जबान से, कलम से, दूसरे तरीकों से, यानी जैसे जैसे हो सकता है कुरान के अहकामात को खोल खोल कर बयान किया जाए। जैसे यानी आज के इस दौर में जो जो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं, जैसे कुरानी क्लासेस हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं या पेल टॉक पर हैं या इन स्पीकर हैं, यानी रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, जो भी जदीद मीडिया है उसके जरिए से जो है वो कुरान को सीखा जाए और दूसरों को सिखाया जाए। और इसी तरह फिर तहरीर के जरिए से, इसी तरह फिर तकरीर के जरिए से, और जो भी जराए और तरीके कोई इंसान इख्तियार कर सकता है तो कुरान को फैलाने के लिए जो है वो जराए और तरीके इख्तियार करने चाहिए। और ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है। अब आप देखें कि आपने बहुत सी नेमतों का जिक्र पहले पढ़ा। नंबर एक साया, नंबर दो रात और दिन, नंबर तीन हवा, नंबर चार बारिश का पानी, नंबर पांच फिर बारिश के पानी का तसर्रुफ कभी इधर कभी उधर, और या फिर ये मुख्तलिफ निशानियां जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया उसका तसर्रुफ, और सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जो है एक खास नेमत का जिक्र किया और ये कि लोग अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। और इस नेमत का शुक्र कैसे अदा हो सकता है, शुक्रगुजार कैसे बन सकते हैं, जब कुरान मजीद जो है इसकी दावत को फैलाया जाए और इसकी तिलावत की जाए और इसके जो पैगाम है उसको लेकर जो है वो कूचा कूचा, गली गली पहुंचाया जाए, और इसकी कुरान के पैगाम को फैलाने में नरमी ना की जाए, कमी ना की जाए, दबा ना जाए, डरा ना जाए कि लोग क्या कहेंगे, शर्माया ना जाए, बल्कि क्या किया जाए कि जुर्रत के साथ, कुव्वत के साथ, हिम्मत के साथ, शहर तो शहर बदल जाएंगे वीराने तक, शब की बजाय शमाए दिल कोई जलाते तो देख, शब की बजाय शमाए दिल कोई जला के तो देख। तो क्या करना है कि अल्लाह के पैगाम को जो है वो गली गली नगरी नगरी कूचा कूचा जो है वो फैलाना है, इसको पहुंचाना है। तो ये है जो हमें यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो पैगाम दे रहे हैं। तो जब इस पैगाम को फैलाएंगे तो फिर क्या होगा कि फिर अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बनेंगे, फिर अल्लाह के ऐसे बंदे बनेंगे जो अल्लाह ताला को पसंद है, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यार करता है। तो इसके लिए फिर करना क्या होगा कि कुरान से दोस्ती करनी होगी। तो इसका इसको पढ़ना सीखिए, इसका तर्जुमा सीखिए और इस पर अमल कीजिए, इसको याद कीजिए, इसको अपने दिल की बहार बनाइए, इससे दोस्ती कर लीजिए और फिर इसे अपने तमाम जो गम और परेशानियां हैं उसको दूर करने का जरिया बनाइए। फिर आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 53 में जो है वो एक और नेमत का जिक्र करते हैं, एक और दलील। वहु अल्लजी मरजल बहरैनी हाजा अजबुन फरातुन व हाजा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। और वही तो है वहु अल्लजी, और वही तो है जिसने मरजल बहरैनी, मरज जो है इसके मानी होते हैं जारी करना, मिला देना, कि जिसने मिला दिया है अल बहरैनी दो समंदरों को। हाजा अजबुन फरातुन, ये एक जो है अजबुन ऐन जाल बा मीठे को कहते हैं कि ये मीठा है, खुशगवार है, ठंडा पानी है जिसको खामखा पीने को दिल चाहता है। और फुरातुन फा रा ता, इसके लफ्जी मानी होते हैं काट देना, तोड़ देना, मीठा पानी प्यास को काट देता है यानी खत्म कर देता है। तो ये जो मीठा ठंडा पानी है फुरातुन, ये कैसा है, प्यास बुझाने वाला है, ये प्यास को काटने वाला है। वहाजा मिल्हुन, और ये पानी जो है ये खारी है, ये पानी जो है ये मिल्हुन नमकीन है, नमक को मिल्ह कहते हैं ना। उजाज, हमजा जीम जीम इसका रूट है, हमजा जीम जीम, और इसके मानी होते हैं कड़वा खारी। वजाला बैनहुमा बरजखन, और दोनों के दरमियान एक बरजख है, बरजख जो है ये पर्दा रुकावट को कहते हैं। वह हिजरन, और बंद है, रुकावट है, महजूरा दूर करना। अब यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं कि दो तरह के पानी हैं, एक मीठा और दूसरा नमकीन, लेकिन मीठा पानी खारी में और खारी पानी मीठे में, इसको अल्लाह ताला ने जो है इनके दरमियान एक रुकावट खड़ी कर दी है, पर्दा डाल दिया है। हिजरम महजूरा, इन पर हराम कर दिया है कि मीठा पानी खारी या खारी पानी मीठा हो जाए। तो असल मतलब क्या है कि मीठा पानी और खारी पानी ये समंदर में साथ साथ चलते हैं। मरज, मरज का मतलब क्या होता है कि दो चीजों का बहम इस तरह मिलना कि इनकी इनफरादी हैसियत बरकरार भी रहे, लेकिन यानी आपस में बिल्कुल गड़बड़ नहीं होते, साथ साथ चलते हैं। और क्या है, हिजरम महजूरा है, क्या है, बरजख है, इनके दरमियान एक पर्दा है कि खारी मीठा नहीं बनता, मीठा खारी नहीं बनता। तो एक मीठा पानी एक खारी पानी, तो मीठा पानी जैसे नहरें चश्मों कुओं की शक्ल में आबादियों के दरमियान पाया जाता है और इंसान उसको इस्तेमाल करता है। खारी पानी जो मशरिक मगरिब में फैले हुए बड़े बड़े समंदरों में है। जमीन का 3/4 हिस्सा जो है ये पानी है और 1/4 हिस्सा खुश्की है। तो अब आप देख लें कि यहाँ पर जो है बड़ी अहम बात हमारे सामने आ रही है कि खुश्की की तरह समंदरों में भी कई मीठे पानी के दरिया चलते हैं और कई दफा ये दरिया सतह समंदर से काफी नीचे होते हैं। और अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है कि सरफेस टेंशन में इख्तलाफ पैदा होता है और उसमें खारी पानी जो है वो ऊपर आ जाता है और स्वीट पानी नीचे होता है, लेकिन आपस में वो मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो अल्लाह की कुदरत की निशानी है इसको यहाँ पर बयान किया जा रहा है। वैसे भी जब किसी संगम पर दो दरिया मिलते हैं या कोई बड़ा दरिया समंदर में जाकर गिरता है तो ऐसे मकाम पर वहां मिलने के बावजूद दोनों पानी अलग अलग दोनों के बीच में एक धारी दूर तक जाती हुई नजर आती है। इलाहाबाद में इंडिया में गंगा और जमुना का संगम आप देखें। इसी तरह जब समंदर में ज्वार भाटा सरफेस टेंशन आता है तो समंदर का खारी पानी साहिली दरिया के मीठे पानी के ऊपर चढ़ जाता है और सरफेस टेंशन की वजह से दोनों पानियों को बिल्कुल अलग अलग रखता है। तो यहाँ पे यही नेमत जो है इसका अल्लाह ताला जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि ये करने वाला जो है ये कौन है, ये अल्लाह है। तो आयत नंबर 53 में मीठे पानी का जिक्र भी है और साथ ही नमकीन पानी का जिक्र भी है। और यहां पर आप ये बात याद रखें कि ज्यादा पानी जो है वो नमकीन है और थोड़ा पानी जो है वो मीठा है। और अगर जो है मुफस्सरीन कहते हैं कि अगर ज्यादा पानी मीठा होता तो सड़ जाता, खराब हो जाता। तो अल्लाह ताला ने इतना सख्त नमकीन और कड़वा और तेज पानी बनाया कि दुनिया भर की गंदगियां समंदर में जाकर जो है वो खत्म हो जाती हैं और उसमें रहने वाली मखलूक जो उसमें रहती है वो जिंदा रहती है, वो नहीं मरती। लेकिन पूरी जमीन की जो गंदगियां हैं आखिर समंदर में फेंकी जाती है ना, लेकिन जो है वो गंदगियां सब खत्म हो जाती हैं। तो ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं। फिर आयत नंबर 54 में फरमाया वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल मा बशरन फजअलहू नसबा व सिहरा वकाना रब्बुका कदीरा। और वो तुम्हारा रब ही तो है और वो अल्लाह ही तो है कि जिसने पानी से इंसान पैदा किया। खलका मिनल माई बशरन, पानी से एक बशर पैदा किया। फजअलहू फज उसने बना दिए, फजअलहू फिर फजअलहू फिर उसने बनाए, फिर बनाया इसी इसी से यानी इसी पानी से क्या बनाया, नसब व सेहरा, नसब खानदान व सेहरा और ससुराल। मुफस्सरीन कहते हैं कि नसब जो है इससे मुराद वो रिश्तेदारियां हैं जो बाप या माँ की तरफ हो और स्वाद हारा से मुराद वो कराबत मंदी है जो शादी के बाद बीवी की तरफ से हो, जिसको हमारी जबान में ससुराली रिश्तेदार कहा जाता है। तो यहाँ पर दोनों रिश्तों का जिक्र किया जा रहा है। तो नसब से मुराद माँ और बाप की तरफ के रिश्ते हैं और स्वाद हारा से मुराद ससुराली रिश्तेदार। चर्बी को गर्म करके पिघलाना, स्वाद हारा है के मानी है चर्बी को गर्म करके पिघलाना और घुलाकर निगल जाना। और जैसे सूरज जो है वो जब करीब होता है तो उसकी गर्मी से भी जैसे कोई चीज जो है वो पिघलती है ना, तो इसी तरह स्वाद हारा वो रिश्ता और ताल्लुक है जो बीवी की तरफ से हो, जिसको उर्फ में ससुराल कहते हैं, यानी ये भी करीबी रिश्तेदारियां हैं। तो वो अल्लाह ही तो है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर इससे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तो एक हकीर पानी की बूंद से इंसान जैसी हैरत अंगेज मखलूक बनाकर खड़ी कर दी। और फिर जो है वो दो सिलसिले शुरू कर दिए, एक तरफ बेटों और पोतों का और दूसरी तरफ बेटियों और नवासियों और नवासों का। तो ये नस्लों का आबाद करना और ये खानदानों का आबाद करना, तो ये कौन करता है? ये अल्लाह ताला करता है कि पहले जो है आप देखें कि इख्तलाफ और फिर आप देखें कि इसका नतीजा, फकाना रब्बो का कदीरा, और तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। तो मानी क्या है कि ये सब कुछ करने वाला जो है वो कौन है? ये अल्लाह ताला है। وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا। ये दलाइल देने के बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं उस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान। और ऊपर से मजीद ये कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। तो इसके मानी क्या है कि अब होना ये चाहिए था कि ये सारी नेमतें अल्लाह से लेने के बाद फिर अल्लाह की फरमा बरदारी इख्तियार की जाती, फिर अल्लाह ताला की अतात की जाती, लेकिन अफसोस कि ये अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना इन्हें फायदा पहुंचा सकती हैं और ना ही नुकसान। और काफिर अपने रब के मुकाबले पर बागी का मददगार बना हुआ है, हर बागी की मदद करता है। क्या करता है काफिर? के जो अल्लाह के नाफरमान है उनका साथ देता है। जहीरा जो है जोए हारा, ये पीठ बैक के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे क्या है कि मदद करना। वमा अरसलना का इल्ला मुबशिरन व नजीरा। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो आपको एक मुबशर और नजीर बनाकर भेजा है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मिशन बताया जा रहा है कि तुम्हारा काम ना किसी को ईमान लाने पर बदला देना है, ना किसी को इनकार करने पर सजा देना है। आपका काम क्या है कि बस लोगों को जो है वो नेकी की दावत दो और बदी से मना करो। जो अच्छा काम करें उनको जन्नत की खुशखबरी दे दो, जो बुराई पर जमे रहें तो उनको जो है वो जहन्नुम से डराओ। इल्ला मुबशिरन व नजीरा। कुल मा असअलकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ यत्तखिज़ा इला रब्बिही सबीला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मैं इस काम पर तुमसे कोई तनख्वाह नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता। मेरी उजरत, मेरी तनख्वाह बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। तो अब यहां पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये कहिए कि मैं नेकी के काम पर जो है वो तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, और मेरा बदला क्या है कि बस तुम अल्लाह के मुती बन जाओ, दिल की पूरी रजामंदी से सरे तस्लीम खम कर दो। तो यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि आप इन लोगों को बताइए कि ये जो मैं दावत का काम कर रहा हूं तो इस पर मैं तुमसे कुछ नहीं चाह रहा, तो तुम मेरा इनकार क्यों करते हो? तुम एतराज क्यों करते हो? तुम झुठलाते क्यों हो? अगर तुम मानोगे तो तुम्हारा अपना ही फायदा है, और अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हारा अपना ही नुकसान है। और तुम इस बात पर गौर करो कि मैं जो ये दावा का काम करता हूं तो इस पर जो है मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं हूं, मेरा मकसद दुनिया नहीं है। तो यहां पर ये आयात बता रही हैं कि दाई जो है हालात जिस तरह के भी हो, दाई अपना काम करता रहता है। वो तलकीन के काम को, वो दावा के काम को कभी नहीं छोड़ता। और दूसरी बात जो पता चलती है कि दाई जो है वो मतलब परस्त नहीं होता, दुनिया परस्त नहीं होता, वो मादी झगड़ों में नहीं पड़ता, बल्कि वो बेगर्ज होता है और अपने इखलाक, किरदार और इखलास के जरिए से लोगों के दिलों को छूता है, लोगों के दिलों को मुतासिर करता है। तो यही पैगाम है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और फिर उनकी सीरत पर अमल करना जो मेरी और आपकी जिंदगी का मकसद भी है, तो उसकी वजह से यही मेरी और आपकी जिंदगी का मिशन है। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का जो थे वो इतराज करते थे, मजाक उड़ाते थे, बातें करते थे, तो आज के दौर में भी मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है, बातें की जाती हैं। और नंबर दो, जितने भी यहाँ पर दलाइल दिए गए हैं तो तौहीद के, आखिरत के, तो इन दलाइल को सामने रखते हुए हमें अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह से मजबूत करना चाहिए और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने चाहिए। और आज के सबक में अमल का जो उसूल है वो क्या है कि कुरान मजीद का अहले मक्का ने इनकार किया और मुसलमानों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन ये कहेंगे, या रब्बे इन्ना कौमी तखजू हाजल कुराना माजूरा, ए मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। तो कुरान की फरियाद के मतलब जो मकसद है कुरान नाजिल करने का, आज का मुसलमान उससे जो है वो गाफिल है, उससे दूर है। तो कुरान में हो गौतजन, ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रते किरदार। तो हमने कुरान को फैलाने के लिए तमाम जराए इस्तेमाल करने हैं और बड़े पैमाने पर जामे जुद्दोजहद करनी है, पूरी ताकत लगानी है, जबान, कलम, जान, माल, सारा कुछ लगाकर जो है फिर कुरान को, अल्लाह के दीन को जो है वो फैलाना है और बेगरज काम करना है। मकसद दुनिया कमाना नहीं बल्कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को नाफिज करना है। चाहते हो चमन में गर लाली तो खूने जिगर अर्जा कर दो, यूं सिर्फ खिजा के मातम से तखलीके बहारा क्या होगी। बहुत दिनों से निजामे हयात बरहम है, चिराग इतने जलाओ कि तीरगी ना रहे। और मेरा और आपका काम क्या बनता है, अपना तो ये काम है कि जलाते चलो चिराग। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।